करते हैं और मिट्टी को खोदो तो ये भी करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मिट्टी मिट्टी रही, जो आप कहते हैं कि इससे ये जर्मेनियम है और ये चीज है और ये गोल्ड है और सिल्वर है और इस चीज की माइंस निकल रही हैं, इसकी ये सारी की सारी कामें बरामद हुई है, कोयला है, तो कहने को आप कुछ उसे कह दीजिए मगर बुनियादी तौर पर तो मिट्टी ही है, मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं। अल्लाह की मजीद साइंस की तहकीक करें तो वो ये भी कहते हैं कि इसमें इतने लाखों साल गुजर गए तो तब ये मिट्टी पर सर्वे तब्दील हो गई, इसमें इतने करोड़ साल गुजर गए तो पत्थर पर जल साल उनके वर्ण में तब्दील हो गया। और ऐसी पानी है कि बुनियादी तौर पर तो पानी है, अब पानी ऐसा भी है जिसे लोग पीते हैं तो खास किस्म के जिस्म होते हैं जो गुर्दे में पथरी पैदा कर देते हैं और कुछ जिस्म ऐसे हैं जो उस पानी को पीते रहते हैं, कभी उनमें पथरी की शिकायत नहीं हुई। और पानी अब गोचर है, हल्का है, ये पहले भी लोगों को मालूम था और अब पानी में वो कहते हैं कि ये चीजें मिनरल का इजाफा होता है, मिनरल वाटर एक होता है, ये किस्म होती है, तो रहा तो पानी ही के अलावा तो कोई चीज ना है। और चौथी चीज आग है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आग का भी एक हाल है, जो कहते हैं ना आग जो होती है वो कम दर्जे की होती है, दूसरी आग ज्यादा दर्जे की होती है, पत्थरों की आग कैसी होती है, लकड़ी की आग कैसी होती है, कोयल की आग कैसी होती है, ये सारी की सारी चीजें तो इंसान बुनियादी तौर पे अनासिर अरबा फोर एलिमेंट दिया, पानी आग हवा और मिट्टी। शबरीला मतला फरमाते हैं कि इंसान इन चारों चीजों से बनता है और इन चारों चीजों में ये मिलकर इंसान के जिस्म में एक तरह की भाप पैदा करती है और उसी का नाम अस्थमा है। हम लोग ये समझते हैं कि वो रूह है, उर्फ-ए-आम में हर कोई यही जानता है। शाहबुद्दीन मोहसिन देवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे नस्मा का नाम देके रूह इसके भी बात मानी है और वो कहते हैं कि ये नस्मा जो है इसको ऐसे समझो कि इंसानी जिस्म पर ये सवार है और इस नस्मा की वजह से, नस्मा को आसान लफ्जों में कह लें बहुत लतीफ हवा, ऐसी हवा जो बहुत ही नर्मोनाजुक है, उस हवा की सवारी इंसान का जिस्म है कि वो नस्मा की वजह से इंसानी जिस्म की हरकत है और उस नस्मा में ताल्लुक कहां से फिर उसके ऊपर सवारी को सवार कौन है, वो इंसानी रूह रब्बानी। तो कहते हैं रूह रब्बानी ने अपनी सवारी के लिए अपनी खसूसियात के इजहार के लिए नस्मा से ताल्लुक कायम किया और नस्मा ने जद्द इंसानी से ताल्लुक कायम किया, ये तीन दर्जे हो गए। मौत कैसे आती है? शबलिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौत से नस्मा का ताल्लुक बदन से मुनकता हो जाता है और इंसानी जिस्म में खलल वाक़े होता है, खून का दबाव बढ़ गया, पानी की कमी वाक़े हो गई, हरारत ज्यादा हो गई, पुराने हुक्मा कहेंगे कि हरारत ज्यादा हो गई यानी बुखार ज्यादा हो गया, आग का उत्तर आ गया, कुछ आ गया, इससे वो जो भाप बनती थी इंसानी जिस्म को जलाने के लिए वो भाप बनना खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो इंसानी जिस्म का उससे जगह वाकिफ हुआ और इससे हमने कहा कि मौत हो गई। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे विज्ञान में ये बात साबित हुई है, मतलब ये था कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें आदम कश में चीजें दिखाई हैं, कहते हैं कि मेरे नतीजे बात साबित होती है कि जिंदगी और मौत का ताल्लुक इस नस्मा से होता है, वो रब्बानी से नहीं। جب تک یہ نسلنا کا تعلق جس میں انسانی سے جڑا رہتا ہے یہ زندہ ہے جب مرض پیدا ہو گیا اور نسلنا وہ بننا بند ہو گیا تو انسانی جسم سے انتقا ہو گیا آمین مر گیا اور یہ جو نسلنا ہے اس کے ساتھ دونوں حالتوں میں جن میں ربانی کا تعلق رہتا ہے انسان مر جائے تو بھی اور انسان زندہ ہو تو اور تفصیل اس کی ذرات یہ ہے کہ یہ نسلنا ہے اس کا روح ربانی سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے اور روح ربانی سے فیض سے پہنچا ہوئی آپ سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے وہ جو روح ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ کل روح من امر ربی کے یہ اللہ کا امر ہے تو کہتے ہیں اس امر کا تعلق اس نسلنا سے ہوتا ہے نسلنا بننا ادھر سے بند ہوا تو انسانی جسم مر گیا اس سے روح سے فکر روح ربانی سے تعلق قائم ہے اب آدمی زندہ ہے تو روح کا تعلق نسما سے نسما کا تعلق جسم سے جب مر گیا آدمی تو نسما اور روح نسما اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا لیکن روح ربانی کا تعلق نسما سے رہتا وہ کہتے ہیں وہ تعلق نہیں ملتا روح ربانی ہے اور نسما میں اس کے اثرات ہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اس روح میں کوئی چیز ڈالی جاتی کے قرآن روح کو برا نہیں کہتا وہ نفس کو برا کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارہ بالسوء اور انسان کا نفس اسے ہمیشہ رزق کی طرف لے کے جاتا ہے اڑ جاتا ہے ہزار دنیا سنسائے کہ آ گئے مت کودو نفس نے انسان کو بتا دیا کہ نہیں یہ کر کے رہتا کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں کہ اس چیز پہ خدا کا عذاب آئے گا انسان کا نفس اٹ جاتا ہے کہ کچھ ہو جائے میں یہ کام کر کے رہوں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ نفس و ما تقواہا اور اللہ نے پیدا کیا انسان کے نفس کو اور جو پھر اسے سنبھال لیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس میں الہام ہوتا ہے انسان کے نفس میں جس کو وجود گناہ کے کاموں کا بھی اور تقواہ نیکی کا بھی کہ تقواہ اختیار کر بہت مرتبہ نفس انسانی پاک ہوتا ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ اتنا گناہگار اور خراب نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس کو ماحول میسر نہیں آتا تو گناہ کی طرف چلتا ہے مطلب یہ بچوں کو آپ دیکھیں ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ اسی کو غریب کر کر دکھا رہے ہوتے ہیں کئی مر جاتے ہیں اور حکومت نے اس کے لیے قانون بنا دیا پولیس کڑی کر دی سب سزائیں نافذ ہو گئیں جیل میں ڈال دیا یہ کر دیا اور اگر کوئی آدمی انسانی نفسیات اور فلسفے کو تصور کو ان چیزوں کو پڑھا ہوتا یا اس نے کہیں سے تربیت حاصل کی ہوتی تو آسانی سے یہ کر سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا اسلام آباد میں مختلف جگہوں میں 15 سوئمنگ پول بنا دیے جائیں اور بچوں کو وہاں جا کر نہایا کر سوئمنگ سیکھ تو انسان کا نفس جو شجاعت اور بہادری اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا اظہار چاہتا ہے انسانی نفس میں اللہ نے بڑی خوبی کی بات رکھی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو گن اٹھاتا ہے اور فائر کرتا ہے وہ 5-7-10 فائر کرنے کے بعد بھی جو آگے چلتا ہے بڑی ہمت ہے اس کی ورنہ انسان اندر سے ڈر جاتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے مسٹری میں پالیسی یہ رکھتے ہیں کہ ایک کا مقابلہ تھی کہ تم پہ 3 آدمی حملہ کرتے ہیں تم اکیلے ہو اس پہ اپنی پالیسی بناؤ جوانی آتی ہے ان شجاعت اور بہادری کا اظہار چاہتی ہے اور آدمی جگہ نہیں ہے جہاں بہادری کا اظہار کر سکے تو کہتے چلو موٹر سائیکل پہ کرتے اس کی بجائے 15-20 یا سینٹر کھلے ہوئے ہوتے جہاں پر پوری ورزش کی سہولتیں مہیا ہوتی تو وہ اپنی جرت کا اظہار وہاں جا کر کرتا یہ کتنا کرتا
अखाड़े होते थे जी, जो लोग जाते थे पहलवान बन जाते थे अखाड़े और मसल बनाने के मुकाबले, और ये वो सब कुछ किया था, एक चीज का इजहार था कि ये चीज है ऐसे। लोगों ने अखाड़े खत्म कर दिए, अपनी नहीं वो तहजीब, तो उसने अपनी शुजात और बहादुरी का जो इजहार करना है वो कहां जाकर करे। इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बुनियादी बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया जिस इंसान ने अपना निशाना दुरुस्त कर लिया, गोली चलाता है और 10 में से उसकी 8 गोलियां लग जाती हैं, 7 लग जाती हैं, और अपनी गफलत से फिर उसने निशाने को खराब कर लिया, अलैहि सबिना मेरी उम्मत में से नहीं रहा। इसकी एक जवाब भी निशाना बाज होता है और गोली चलाना वो जानता है, तीर चलाना जानता है, तो ये बच्चों की बुनियादी तरबियत है जो होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में उल्टा हमारी रही नहीं, और पहले वो पठान आया करते थे, गुब्बारे लगाए हुए होते थे और कहते थे कि शरे पे गुब्बारा ओढ़ दो तो इतने पैसे हम तुमसे लेंगे, वो भी नहीं रही। एक छोटी सी चीज हुआ करती थी, वो भी अब कहीं देखने में नहीं आती, इसलिए कि बुनियादी तौर पर बच्चों को स्नैपिंग सिखानी चाहिए। जो बच्चा स्नैपिंग कर सकता है, जो बच्चा गोली चला सकता है, कहीं निशाना बांध के फायर कर सकता है, उसके उठान में और दूसरे बच्चों के उठान में जमीन आसमान का फर्क है। अब उसके आसमान की मिसाल अगर देखना चाहे तो ये जो बच्चे कैंप में पैदा होते हैं, जिनके बाप बहुत अफसर होते हैं, वो सारा दिन छुट्टियों में साइकिलें चला रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं, एक सड़कें खुली हैं, ट्रैफिक ज्यादा है नहीं, कि नेकिंग का भी डर नहीं कि बच्चा अगवा हो जाएगा, वहां को पता नहीं बच्चा किधर गया हुआ है, वो साइकिल ही चला रहे होते हैं, उससे ये कह रहे थे। उसके मुकाबले में जो बच्चे शहरों में होते हैं, ना उनके लिए अव्वल तो साइकिल चलाना दुश्वार, और वो भी तो इतना रश वो चला नहीं सकते, किसका अगवा का डर, फिर धूप का, किस किस चीज का डर होता है, ये सब चीजें ऐसी होती है। इसलिए वो जो बच्चा शुजात और बहादुरी चाहता है और उसे अपना मैदान नहीं मिलता तो वो गलत कामों में पड़ जाता है। लोग कहते हैं तनब खराब हो गया, अपना बड़ा अच्छा था, बाप था, हमने उसे मौका नहीं दिया कि अपने जोहर को दिखा सके, कतल ऐसे ही थोड़ा कोई कर देता है, बड़ी हिम्मत चाहिए कतल करने के लिए, गोली चलाने के लिए, उसके अंदर पूरा एक जज्बा होता है। इसीलिए कुरान दो चीजों को साथ साथ दो मुकाम से जिक्र करता है, अल्लाह ताला कत्ल और ज़िना को दोनों को बराबर जिक्र करते हैं, ला तक्तुलुन नफ्सल्लज़ी हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़, और लोगों खबरदार जो कत्ल करो, और जिसके फौरन बाद कहता है या उससे पहले कि ला तक्तुलुन ज़िना और ज़िना के करीब भी मत जाना, इसलिए कि ये दोनों गुनाह ऐसे हैं माज़ अल्लाह तक्तुलुल्लाह, जो शुजात और बहादुरी को चाहते हैं। बुद्धिल आदमी न कतल कर सकता है, इतना बड़ा गुनाह कर सकता है, इतने बड़े गुनाह के लिए अपने आप को आमादा करना, उसमें सिर्फ हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। वो हिम्मत इस्तेमाल करता है फिर ये काम करता है। इसीलिए कतल और इन दोनों चीजों को अल्लाह ने इकट्ठे जिक्र कर दिया कि इंसान में आकबीयत शुजात की कुवत होती है, एक जगह उसे कमजोर भी तो मिलता है और वो उसे मार देता है, दूसरी जगह उसी की जिंस से एक इंसान एक औरत काबू मिल जाती है जो अपने आप को उसके हवाले कर देती है, उसकी तफक्कों और बर्तरी के जज्बे को भी तस्कीन मिलती है कि ये काम मैंने किया है। ये वो चीज है जो इंसानी नफ्सियात में है, लेकिन इंसानी नफ्सियात को समझने वाले कोई मोह कर बैठे हुए सौ तो शहर में कोई स्विमिंग पूल बनाए, कोई गंदगी की जगह बनाए, कोई बागात बनाए, कोई यहाँ खेल दिया करो, यहाँ जाया करो, यहाँ ये सारे काम करो, तो ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चीजें ये जो मोटरसाइकिल पे दूसरी तीसरी चीजें ये खत्म होती चली जाती है, मगर हकीकी अफवाह जो है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करती। इसी इंसान का नाम अल्लाह का पाला आप हुजूर हुआ तकवा, उसमें तकवा भी आता है और उसमें गुनाह भी आता है। ये रूहे रब्बानी में जो नेकी की कुवत होती है नतमा में मुंतकिल होती है, नतमा के अंदर से जिसमें मुंतकिल हो जाती है। इंसान अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है, हर हाल में इंसान का ताल्लुक नतमा का, बदन चाहे टूट जाए, रूह-ए-रबानी से वो जुदा नहीं। फिर इत्रात का फायदा क्या हो जाता है? शाहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मौत के बाद इस नज़मा को दूसरी जिंदगी मिलती है। और उसके लिए मिसाल भी दी, पिछली मरतबा तफसील से आ गई थी। उसका खुलासा ये है कि अगर आप हवा को बोतल से निकालें और खाली करना शुरू करें तो एक मौका ऐसा आएगा कि जब बोतल बिल्कुल हवा से खाली हो जाए और उसके बाद वो बिल्कुल टूट जाएगी धमाके के साथ, क्योंकि बाहर की हवा का इतना उस पर प्रेशर पड़ेगा कि अंदर कोई चीज है नहीं जो उसे तैर सके, और थोड़ी सी भी हवा रहेगी तो फैल जाएगी। शाह साहब रहमतुल्लाह ने मिसाल देके ये समझाना चाहा है कि होता ये है कि मौत के बावजूद नस्मा में कुछ असरात जिंदगी के बाकी रह जाते हैं और मरने के बाद उनके रबानी जो है वो इस नस्मा की तरबियत करती है। थोड़ी बहुत इस बोतल में हवा रहती है, थोड़ा बहुत नस्मा का जो ताल्लुक है, इससे ये इंसान ये जिस्म दोबारा कब्र में जिंदा होता है। वो कहते हैं रूह नहीं आती बल्कि रूह इसी नस्मा को इस्तेमाल करती है। ये शाह रहमतुल्लाह अलैह ने नई बात कही, इन बातों की तरफ इशारा। पुराने मुतकद्दमीन फलासफा जो थे उन्होंने किया है, लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हल्कन बहुत खुल के इस बात को कहा है कि वो कहते हैं कि वो रूहे रब्बानी इस नज़मा में फिर कुव्वत पैदा करती है और फिर इस तरह होता है कि इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है कब्र में। अब ये जो नज़मा है आदमी मिसाल से कुव्वत देती है और फिर नज़मा को नई जिंदगी मिलती है, तो फिर आलिमे बरज़ख के वाक़यात शुरू होते हैं। वो कहते हैं इस मौत के बाद जब नज़मा का ताल्लुक मुनक़ता हुआ और क़यामत तक, आगे क़यामत का ज़िक्र ला रहे हैं कि क़यामत में क्या होगा, क़यामत तक की जो तुम्हारी जिंदगी है इसमें नज़मा रूहे रब्बानी से फैज लेके तुम्हें पहुँचाती है। फिर मैयत सुनती भी है, देखती भी है, और वो बहुत से अहवाल हैं जो मैयत पे गुजरते हैं। इसीलिए डायरेक्टर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जुमे के दिन सुबह सुबह सालिक से पहले कब्रों पे जाया करो अपने इज्जत। उसाथ हमारे अल्लाह कहनली साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, उनसे वो नकल करते थे कि नज़मा की कुव्वत उस वक्त बहुत शदीद होती, ये जुमे के दिन असर के बाद जाया करो कब्रिस्तान। इतना तो हदीस में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको पहचानती है जो उसकी कब्र पे आता है। और इसी से फुकहा ने मसला लिखा है कि कब्र के उतना करीब खड़ा होना चाहिए जितना जिंदगी में उससे कुर्ब का ताल्लुक था। वालिदैन है तो ज्यादा करीब खड़े हो जाना चाहिए, कोई और है तो थोड़े से फासले में भी खड़ा हुआ जा सकता है। शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये नज़मा के ताल्लुक से मैयत पहचानती है कि कब्र पे कौन आ। इसी तरह आम आवाम को ये बताना कि मैयत सुनती है बड़े खतरनाक बात, बड़ी खतरनाक बात है। ये एक तरह से शिर्क का दरवाजा खोलने के मुतराफ़, क्योंकि जब आम आवाम को बताते हैं कि मैयत सुनती है तो जाकर इससे अगला स्टेप ये लेता है कि कहता है अच्छा चलो फिर गुलाम वली अल्लाह की कब्र पे हजरत से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ मांगो। फिर वो कहता है हजरत की कब्र पे गया था, मैंने हजरत से अर्ज किया था, हजरत ने ये कर दिया, हजरत की दुआ से ये हो गया। हालांकि आदमी सोचे कि क्या मैयत से दुआ का कहना ये खुद किताब सुन्नत से साबित है, बड़ी नाजुक बात, बहुत हद से ज्यादा नाजुक बात है जो हम कहने लगे हैं। खुदा न करे कि इससे कोई आदमी गुमराही का कोई मकसद निकाले, मगर हज़रत आयतुर रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर जाकर कोई बात कहना कि हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे, ये जायज है या नाजायज है, इससे बहस किए। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र कब्र शरीफ पे जाए सलाम पेश करें, ये हर कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मुझे अपनी शफाअत से याद रखें या मेरी शफाअत करें। वजह किए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ किया है, कहते हैं ये विवरण है, उसकी वजह यह है कि तमाम सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इतने देर कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने आगे कब्र शरीफ पे गांव आवे कहते हैं बाबर के नाम नहीं का तो कुछ कैसे कह सकते और इसके मुकाबले में बाकी पूरी उम्मत वो कहा कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भी सुनते हैं और उनसे शिफात की दरख्वास्त भी की जाए वो कहते हैं कि नहीं है मुस्तहब हम भी सारे तकरीबन सुपाहा लिखते हैं मालिकी लिखते हैं शाफी और हनबली सब लिखते हैं लेकिन असूली इख्तलाफ भी हुई है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं ये मतलब उनके ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ पे जिंदा नहीं या सुनते नहीं वो कहते हैं कि जो तुम शफात की दरख्वास्त कर रहे हो ना ये दरख्वास्त करना बिदअत है उम्मत असलाम के कायल नहीं रहे बाकी वो कहा कहते हैं कि जब आप सुनना उनके लिए मानते हैं और जानते हैं कि सुन रहे हैं तो उनसे शफात की दरख्वास्त करने में कोई हर्ज नहीं इसी से निचली जगह पे आ जाइए तो आवाम को जब ये बताया जाए कि मीडिया सुनती है और इतनी ज्यादा इस पे दलायल है कि बजाय इसका इनकार मुमकिन नहीं है लेकिन मोहतात उलमा आवाम ने इतने बयान करते हैं कि कहते हैं ठीक उस कब्र के साथ फिर वो होने लगेगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के लिए हमने इजाजत दी लोग कहेंगे कि यहाँ भी इससे दुआ कराओ मीडिया से दुआ कराओ ऐसे होगा ऐसे होगा ये सब चीजें लोग कहते हैं समाए मौका का मसला सुनते हैं आवाम में बयान करना ये शिर्क का दरवाजा खोलना अगर चेक टिकट है बीतियों अगर आप इस तरफ है खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे इक्का दुक्का वाकया में दो ऐसे मिलते हैं ऐसे कोई इब्न हारी रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ में लेटे हुए थे और अपना रुखसार कब्र मुबारक तो बंद नहीं हुई थी वो मर रहे थे और रो रहे थे तो मरवान आया और उससे पूछा ये कौन है तो लोगों ने कहा सारी रजेलान है तो उसने कहा इतनी पे गए ढेर से क्या कर रहे हो उन्होंने कहा ऐसे ना कह तू जानता नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम है और उनकी मोहब्बत की वजह से वो लेटे हुए ये सारी चीजें हैं लेकिन लोगों में बयान करना कि मैयत सुनती है और मैयत देखती है ये लोगों को एक तरह से बुराई की तरफ ले जाना है और उसका नतीजा आगे चल करके निकलता है कि लोग ऐसे मुकामात को दुआ के लिए ज़ियारत के लिए मस्जिद से ज्यादा मुतवज्जह समझने लगते हैं हालांकि मस्जिद की बरकत हद से साबित है लोग मस्जिद में आके दो रकतें पढ़ के साथ दुआ नहीं मांगेंगे कब्र शरीफ पे जाएंगे और कहेंगे कि वहां दुआ मांगो वहां कबूल हो फिर से जलवे भी हो जाते हैं कबूल भी हो जाती है इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी हकीकत है कुछ ना लेकिन आवाम में बयान नहीं की जा सकती लोगों में बयान करने का मतलब ये है कि लोगों में शिर्क और बिदअत के दरवाजे खोल दो और अल्लाह का दीन असल जो है माज अल्लाह लोग बजाय इसके कि अल्लाह से मांगे तो इधर से मांगने लगेंगे इया का नाबूदू है इया का नस्ताईन अल्लाह ने जो सिखाया है तौहीद में फलन वाकई हो जाता है बहुत सी चीजें हैं अब आगे ये बात एक बात और आप करें देखो नजर अल्लाह के अलावा किसी के लिए मानना ये शिर्क है इसलिए कि नजर माली इबादत है आदमी पैसा अल्लाह के लिए खर्च करता है कहता है अल्लाह तेरी राह में इस आदमी को मैं खाना खिलाता हूँ अल्लाह तेरी खुशी के लिए इस गरीब को कपड़ा पहनाता हूँ ये नजर है वो कहा आप लिखते हैं कि मखलूक के लिए नजर नहीं मानी जा सकती क्योंकि नजर इबादत है और मखलूक के लिए नजर मानना ये अल्लाह के साथ शिर्क है जैसे मखलूक की जिस्मानी इबादत मखलूक के लिए नहीं की जा सकती इस तरह माली इबादत भी मखलूक के लिए नहीं की जा सकती अल्लाह जो मखलूक है इसके सामने कोई सजदा नहीं करता माँ बाप मियाँ बीवी जितने जितना भी रिश्ता हो मोहब्बत का कोई नहीं कहता कि मैं नमाज अपनी माँ के लिए पढ़ रहा हूँ वालिद साहब के लिए पढ़ रहा हूँ कुछ भी नहीं दिमाग तो अल्लाह के लिए पढ़नी सजदा अल्लाह को करना है रुकू और सजूद अल्लाह का हक है ठीक इसी तरह माली इबादत अल्लाह का सुनती है अल्लाह के अलावा किसी भी नजर नियाज नहीं ये मसला अपनी जगह ठीक है उर्दू जुबान में नजर करना एक तो ये है नजर शरई इसे हम इत्तेला में कहते हैं शरई नजर है एक है नजर उर्फी उर्फी नजर ये कि बादशाह जब इख्तदार संभालता था तो खानदान वाले बहन भाई फूफी चचा मिलने वाले सब आकर नजर पेश करते थे कि हुजूर ये तोहफा है आपकी नजर में मुबारक अब ये होता है भाई कैप्टन था मेजर हो गया दोस्त ले जाकर कोई चीज पेश करते टीचर था प्रिंसिपल बन गया घर वाले दोस्त आवा कोई ना कोई चीज पेश करते ये नजर है उनकी कि हमने नजर पेश की बादशाहों में मुगलों में अलग बहुत इस्तेमाल होता था अब भी सऊदी अरब में शाह बैठता है शाह अब्दुल्ला हसन आया तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि शाह अब्दुल्ला ने जिसने हुकूमत संभाली है 28 की वफात के बाद अरबों के जितने कबाइल थे उन्होंने आगे तकरीरें की और नजर पेश ये नजर पेश करना है और में शरीयत नहीं है ये उर्वी नजर और शरई नजर हिंदुस्तान में आके आपस में मिल गई शरई नजर हराम शिर्क है उर्वी नजर में कुछ भी नहीं उर्वी नजर उर्फ में उर्फ आम में जो है वो है किसी को खुशी के मौके पर कोई चीज पेश करना या किसी को खुश होकर कोई चीज देना ये उर्फी नजर आपने सुन्नत वल जमात में हमेशा रही है उर्फी नजर ये कि किसी भी बुजुर्ग के सारे सवाब के लिए देख पकवा देना खाना घर में अच्छा पका है उसमें ये नियत करना कि अल्लाह इस खाने को इसका सवाब फला बुजुर्ग को पहुंचा दे ये है नजर यहां जो उर्फ शरई और उर्फ नजर नजर शरई और नजर उर्फी के दरमियान फर्क नहीं कर सके उन्होंने बर्बादी कर दी फिरके बन गए उसने कहा मैं हजरत को नजर की नजर पेश करता हूँ भाई इमाम में जाकर नजर पेश करता हूँ फलाने का नजर पेश करता हूँ उसका मकसद अगर ये है कि मैं इसादे सवाब करता हूँ हजरत से मुझे ताल्लुक है मोहब्बत है मैं वहां के फकीरों को खाना खिलाता हूँ तो कोई अरज नहीं तुम्हें मोहब्बत है तो हजरत की मोहब्बत और इसादे सवाब में जरूर करो किसने रोका है जो मुफ्ती फतवा देने वाले थे वो इस नजर उर्फी को नहीं समझे उन्होंने कहा रहे ये शरई नजर है पैसा जाके कब्र पे खर्च कर रहे हो पैसा तो अल्लाह के लिए खर्च करना था तुम काफिर हो गए ये बहुत बड़ा फर्क है लोग इसे जानते नहीं इसलिए नए नए मुफ्ती बने होते हैं कुफर के भी फतवे और फिर कावारियत में ये भी काफिर ये भी काफिर शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा इस्नाशरिया में लिखा है कि शायद की नजर दरूद और फातिहा ये तो कदीम से आपने सुन्नत वल जमात के मामूलात में चला आता है उन्होंने लिखा है शिया को कि तुम लोग जो ये कहते हो कि हम शायद को नहीं मानते मुराद उनकी है तो हमारे यहाँ तो कदीम जमाने से दरूद फातिहा और दरूद और नजर पेश करना में शायद को भी शर्त चला है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुराद नजर उर्फी से है हम उनके लिए इशारे सवाब करते हैं अब उसे नजर शरई समझने लगे तो कुफर हो जाएगा माज अल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह या कोई हो अल्लाह का दीन किताब सुन्नत फिका ये सबसे आलम ये होता है अवाम में मसाइल का बयान आदमी समझदार हो तो अपने हल्के में कोई बात कह सकता है हर आदमी को थोड़ी बात कही जा सकती है मुर्दे सुनते हैं जब आप ये बताएंगे लोग कहेंगे हजरत सुनते हैं चलो जाकर फिर इसी लिए आप जाएंगे कभी 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 जाए आप तो जिस जगह हम गए तो वो चादर उठा कर मिजाज से सर अंदर देकर कोई बात कर रहा है तो बाहर जब निकले तो हमने उनसे पूछा कि आपने चादर उठा के और अंदर जो बात की थी हजरत रहमतुल्लाह की कब्र में तो ये क्या था हमें समझ नहीं आई उन्होंने कहा जरा ज्यादा फ्रीक से सुनते मैंने कहा ये पत्थर लगे हुए हैं मिट्टी है हजरत रहमतुल्लाह के इंतकाल को 800 साल तकरीबन गुजर गए तो ये एक पर्दे की चादर इस आवाज में हाइल हो जाएगी हजरत पर्दे के बाहर से भी सुनते अंदर से कहने लगी अपना अपना किधर मैंने कटी ये सब जहालत की कार फरमाइयां है ये अल्लाह ने सुनवाना है अगर सुनवाना है तो इस तरह भी और इस तरह भी चादर का बीच में याद रखना है इसी शाह रहमतुल्लाह जो लिखते हैं ना कि नजमन का ताल्लुक बदन इंसानी से फिर पैदा हो जाता है ये है वो असल जिसको कहते हैं कि मिट्टी सुनती है اور متعدد احادیث میں آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو ادراک ہوتا ہے جو اس کی قبر پہ آتا ہے میت کو پتہ ہوتا ہے جو اسے نہلا رہا ہے اور اسی وجہ سے حنفیہ میں بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ آپ کے لیے ہوگا ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حنفیہ میں کئی ایک لوگ اس طرف گئے ہیں صحابی نے جو مختار کی شرح لکھی ہے رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی اور بہت سے کہ میت کی قبر پہ جب دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کی جائے تلقین اب کہیں نہیں رہی خالص تلقین شیعہ میں رہ گئی اور شیعہ کھڑے ہوتے ہیں قبر پہ اور کہتے ہیں ارے فلاں فلاں کے بیٹے فرشتے آئے تو یہ بتانا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور میرا دین اسلام ہے اور میں ایمان لایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ پھر حسن پہ حسین پہ فاطمہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور پھر آگے وہ پوری لڑی لکھتے ہیں جیسے امام باقر پہ پھر جعفر صادق پہ پھر زین العابدین زین العابدین پھر سارے گنتے چلے جاتے ہیں یہ شیعہ تلقین کرتے ہیں ہمارے نزدیک تلقین میت کی وہ ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع قیامن تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ سارا جو رکوع پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک تلقین وہ ہے اس تلقین کے باوجود نبی فقہا میں سے بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی قبر پہ جب تدفین ہو جائے تو کھڑے ہو کے اتنا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے اب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ انہیں جواب دیں یا آ رہے ہوں گے انہیں آپ جواب دیں کہ میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرا دین اسلام یہ میت کی ترقی سنہ مالکیوں میں بھی پائی جاتی ہے ہم نے دیکھا نہیں اس سے کچھ کہہ نہیں سنی سنائی باتیں ایسے بھی ہو سکتی یہ وہ چیز ہے یہ تعلق نسمہ کا ہے جن سے انسانی شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ہوئے ربانی وہ نسمہ کو نہیں چھوڑتی وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ عالم برزخ کے جتنے واقعات ہیں قبر میں آرام کا پہنچنا ہے قبر میں عذاب کا ہونا ہے یہ نسمہ کا تعلق انسان اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری ہے اور ادراک کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تیسرا فائدہ وہ کہتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور ٹونگا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی تین مرتبہ سور ٹونگا جائے گا سور کا مطلب کیا ہے آواز حقیقی بجلی حضرت عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا معراج میں کہ اسرافیل کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑی بھی ہے جیسے جانور کا سینگ اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اسرافیل ہے اور آپ نے فرمایا اسرافیل نے بالکل اپنے منہ کے قریب کو رکھا ہوا تھا اور ایسے بالکل الرٹ اٹینشن کھڑا تھا کہ ابھی حکم آئے اور ابھی حکم مارے آپ نے فرمایا میں نے ایسے دیکھا اسرافیل کو تو میں نے کہا یہ منظر کیا ہے جبریل امین نے کہا یہ اسرافیل ہے اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جس دن سے یہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ایک لمحے کی غفلت نہیں ہے کہ کب اللہ کو حکم آئے اور وہ پھونک جب مارے گا اس میں تو آواز پیدا ہونی شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ آواز پیدا ہونی شروع ہوگی اور لوگ گھبرا کے دیکھنے لگے گے پھر وہ آواز بلند ہوگی اور آپ نے فرمایا اونٹ کو پانی پلانے والا آدمی اپنے اونٹ کو چھوڑ کر صاف کرا ہوگا اور آپ نے فرمایا تالاب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر صاف کھڑے ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ پھر تم دیکھو گے کہ امید والی عورتیں اپنے بچوں کے لیے جو محتاط تھی وہ بھی صاف کھڑی ہوگی وہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ اس فریکوینسی پہ پہنچ جائے گی جہاں پہنچ کے جیسے کان کٹ جاتے ہیں آدمی مر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں اسی لیے آپ نے کہا شراب نار اس دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے جس پہ قیامت قائم کی جائے گی और इसीलिए आपने फरमाया कि आखिरी मर्तबा एक हवा चलेगी बहुत ठंडी और बहुत नरम और आपने फरमाया जो जो शख्स दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता था वो हवा उसे मार दे वो सूंघेगा और खत्म हो जाएगा सांस लेगा और खत्म हो जाएगा और उसके मुकाबले में दुनिया में जब शरीर आदमी रह जाएंगे तो फिर वो भूख शुरू होगी वो दूर भूखता शुरू होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन बढ़ते बढ़ते इंसान मर जाएंगे ये पहला दूर भूखा जाएगा दूसरा दूर इसके बाद भूखा जाएगा और वो ये होगा कि जिस तरह कायनात के आगाज में अल्लाह ने जिंदगी दी इंसान जिस बने हुए थे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के फिर उनके बाद अल्लाह के हां जितने तो होंगे ना कुछ कुछ ना कुछ सूरत की होगी अल्लाह ने अपना फैज जारी फरमाया रूहें डाल दी बिल्कुल इसी तरह दोबारा ये काम शुरू होगा जिस तरह पैदा हुआ हुआ था और लोग आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू होंगे जमीन पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला आदमी होगा जिससे कब्र हटाई जाएगी और आप मैं ऐसे होगा और इसी तरह मदीना मुनव्वरा के लोग मेरे साथ होंगे फिर आपके मुनाम और गर्मा वाले भी मुझसे मिलेंगे फिर आगे चलते चलते इस सारे क़यामत के मनाज़िर आएंगे ये दूसरा दूर फूका जाएगा और इसके बाद लोग परेशान होंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है किधर कोई जा रहा है और भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और फिर तीसरा दूर फूका जाएगा कि अल्लाह आप यहाँ चलो और हिसाब शुरू होगा शब्दा रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो नतमा है जिन लोगों को दूसरी जिंदगी मिलेगी उसकी सूरत ये होगी कि वो जो रूह है उसका पैर इस नजमा पर पहुंचेगा और ये नजमा जो है ये कुछ मादियत से और कुछ आलम निसाल से लेकर एक जिस्म तैयार कर लेगी बात क्या साहब रहमतुल्लाह की समझ में आती है लेकिन हमें भी इसके मानने में तामुल है हमें इसके मानने में तामुल ये है कि ये इंसान जो दफन किया गया था इसी के अज्जा दोबारा जिंदा किए जाएंगे अशर इसी जिस्म पर कायम होगा शाहबुल्ला रहमतुल्लाह जो कहते हैं कि आलम मिसाल का भी कुछ हिस्सा होगा हजरत ही जानते हैं उनके आलम मिसाल का क्या हिस्सा होगा वो इतना बोली सीना की तस्वीर की गई है लोगों ने कहा बोली सीना इसलिए काफिर है कि वो कहता है कि ये इंसानी जिस्म जो मिट्टी में मिल जाएगा ये नहीं होगा कोई और अल्लाह के बाद ऐसी नहीं है अगर बोली सीना ये कहते तो काफिर होते फिल्म की तस्वीर में क्या छुपा था हमने बोली सीना की अंदर किताबें देखी तो बहुत पहले हम इसे बयान कर चुके कि बोली सीना ने सिर्फ ये कहा है कि अपने इंसानी ये साबित नहीं कर सकती कि इंसानी जिस्म जगह जगह होके मिट्टी में मिल जाए तो फिर इसे दोबारा उठा लिया जाएगा वो कहते हैं अगर साबित नहीं कर सकती यहाँ पहुंच के अकल की बजाय में वही पे इस्तेमाल करना चाहिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं इंसान का जिस्म भी और इतने आने में निहाल से भी कोई चीज आएगी इसके मानने में भी रखो था फिर पता नहीं फिर इसके बाद क्या हो मुमकिन है किसी ने इसकी तशरीह लिखी चौथा फायदा इसका ये है कि जो रूह-ए-रब्बानी है नज़मा और रूह इसके दो हिस्से हैं एक हिस्सा खुदा की तरफ है और उसमें मलकूतियत है फरिश्तों जैसी नेकी है फरिश्तों जैसी पाकी की इंसान जिन्नात और फरिश्ते इन तीनों में बड़ा फर्क है फरिश्ता मासूम है अल्लाह के कुर्ब में है जिन ज्यादा इबादत करे सारे बन जाएगा एक बन जाएगा इंसान ऐसी चीज है जिसमें दोनों पहलू हैं दो भारी खच्चर है इंसान मर्तबा नबूवत तक खुदा ने उन्हें उठाया और इंसान ये ऐसा है कि असफल काफिली बदतरीन गड़े में जा पड़ा इंसान ये सारी चीज है इसीलिए ऐसे मुजद्दिद अल-बिथानी सिद्दीक रहमतुल्लाह ने जिक्र लिखा है कि अल्लाह की जात की तजल्लियात सिर्फ इंसानों पर पड़ती है और सिफात की तजल्लियात बाकी सब पे पड़ती है मसलन हयात अल्लाह की सिफत है ये फरिश्ते में बड़ी फरिश्ता जिंदा हुआ हम पे बड़ी हम जिंदा हुए जिन्नात में बड़ी जिन्नात जिंदा हुए दुआ इबादत अल्लाह ने इल्फात किया फरिश्तों पे जिन्नात इंसानों की सबसे इबादत की وہ کہتے ہیں اللہ کی ذاتی صفات صرف انسان میں ہے اور وجہ کی ہے کہ انسان کی پیدائش میں مٹی شامل ہے اور وہ کہتے ہیں نور کو مٹی سہ سکتی ہے مٹی کے علاوہ کوئی چیز سہ نہیں وہ کہتے ہیں اصل جدید رحمت اللہ اس لیے اللہ کے انوار اور برکات اور تجلیات جو پڑے گی یہ مٹی پر پڑے گی اور مٹی انسان کے امیر میں شامل ہے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت طریقہ بھی ہو سکتا ہے مہمان بھی ہو سکتا ہے اور آخری بات انہوں نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس روح کو تم اتنا ہی سمجھ لو اگر تم اس سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا علم کچھ اور ہے وہ علم جو ہے وہ فلسفہ حقائق کا علم کہلاتا ہے تصوف کا وہ علم تصوف دو طرح کا ہے ایک ہے عملی اور ایک ہے علمی علمی تصوف یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر آپ علمی تصوف کی بات کریں تو آیان ثابتہ کی بحث کر لے گا جنات سکتہ کی بحث کر لے گا عالم مثال کی بحث کر لے گا تجلیات ذاتی کی بحث کر لے گا سب کی سب اصطلاحات ہیں صوفیہ کی اور جب آدمی تصوف کو پڑھتا ہے ان اصطلاحات کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں پتا تو تصوف کی کتابوں سے گمراہ کر اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھتی ہیں انسانوں پہ اور پھر کیا کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر پڑا ہوا ہو تو پھر پتا چلتا ہے ابھی یہ بات ہوئی کہ اللہ کی تجلیات صفاتی ہوتی ہیں اور ذاتی ہوتی ہیں تجلیات ہر ایک پہ صفاتی پڑھتی ہیں انسان پہ ذاتی پڑھتی ہیں ان کے پیچھے پورا تصوف اور حقائق کا علم ہے اور ہمارے دور میں تقریباً یہی اٹھ گیا بڑے بڑے صوفیوں کو نہیں پتا کہ تجلیات ذات کیا ہوتی اسی سے پڑھتے جو نہیں تعلیم حاصل نہیں کرتے آپ اسے سوچیے گا کہ مجدد القسطانی سرندی رحمت اللہ کے مکتوبات وہ چھوٹا سا دو جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے مبارک لاتے ہیں یہ نتائج کیا ہوتے ہیں لطیفہ قلبی کیا ہے یہ لطیفہ قلبی کا اصل مقام کیا ہے روح کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے ایک ہے یہ اور دوسرا تصوف کا وہ پہلو ہے جسے سلوک کہا جاتا ہے اور سلوک میں اسباب طے کرتے ہیں باقاعدہ مثلاً جس طرح دنیا میں 30-35 اسباب ہیں وہ ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ اسی ساری سلسلے میں 8-10 اسباب ہیں وہ زندگی کہتے ہیں اس میں لگا دو یہ اسباب کا طے کرنا یہ تصوف سے ایک درجہ آتا ہے جب شیخ پہنچ کے اپنے مرید پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہو گئے ہیں اس کو تزکیا ہو گیا ہے اس لائن کو سمجھ گیا ہے اسے خلافت دے دیں ہمارے دور میں تصوف کی علمی حیثیت تو رہی نہیں تھی پڑھنا پڑھانا کتنے ہیں یہ دیکھے ایک یہ رہ گیا تھا کہ قرآن صوفیہ وہ باقاعدہ اسباب کی تلقین کرتے تھے خیر سے اب ہمارے زمانے میں وہ بھی ختم ہو گیا اس لیے ایک ایک شیخ کے 200 خلیفے ہیں 300 خلیفے ہیں اب ہفتے نہیں فہرست چل رہی ہوتی ہے مہینے نہیں فہرست چل رہی ہوتی ہے نہ شیخ کو پتا ہے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں نہ مرید کو پتا ہے نہ اس نے مراقبات کیے ہیں نہ اس نے کیے ہیں بس اللہ کا نام ہے دیے جاؤ اور خلاف سے تقسیم کیے جاؤ کی نواب نے پورے کے پورے اسباب کا ذکر کیا الطاف القدر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور وہ اس میں لکھتے ہیں الطاف القدر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر روح کے بارے میں تم اتنے زیادہ جاننا چاہتے ہو تو پھر آگے چلو یعنی علم فلسفہ اور علم تصوف کے جو حقائق ہیں ان تک پہنچو وہاں پہنچ کے پھر پتا چلتا ہے کہ انسانی روح کیا وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان اپنی روح کسی چیز میں کیسے منتقل کر دیتا ہے وہاں پہنچ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ ایک بلڈنگ میں روح کیا ہوتی ہے یہ عمارت کی روح کیا ہے اس لیے ایک آدمی گزرتا ہے تو صاحب نظر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ عمارت تو تباہ ہو گئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت یہ بلڈنگ تو کھڑی ہے تو چند دن بعد پتا چلتا ہے کہ عمارت کی یہ پتا چلتا ہے اس نے اصل جو مالک تھا جو ان کا روح رواں تھا جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی رونق تھی وہ آدمی اس کے تک پڑا جگہوں کا اعتبار رہنے اور بیٹھنے والوں سے ہوتا ہے نا غالب کہتا ہے ہر ایک مکان کو ہے بقیتے شرف اثر हरिक मकान को है मकीते जरब खतर अब्दुल्लाह वाले हर जगह जो आदमी रहता है ना उससे जगह को शक मिलता है इज्जत मिलती है मजनू जो मर गया है तो जंगल दाम ये जंगल जो आबाद था मजनू के नाम से था जब वो मर गया तो जंगल दाम हो गया है तो वो जो मेरे में रहने वाला था वो कहां गया तो वो जो बुजुर्ग देखते हैं कि बिल्ली की मुंह निकल गई है अब वो कैसी होती
He said that he was a man.
हिंदुस्तान पता करो कि आज किसका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ जैसे अलमुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह जो अपने मुजद्दिद अल-फिसानी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हाज आजम बिनौरी रहमतुल्लाह के खलीफा थे उस दिन उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें आलमी मिसाल में पता चला कि जो इतने बड़े वलीउल्लाह थे मुत्तबे सुन्नत के इंतकाल हो गया आपने आदमी तसव्वुफ के हकायक को पढ़ता है तो फिर पता चलता है ये जानवरों की रूहें क्या होती हैं ये वो हिस्सा है जिस पर मेहनत करके कभी कभी हिंदू भी पहुंच जाते हैं फिर हिंदू अपने मुरीदों को बताते हैं जो मौत के जो भी आता है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा वो फर्क ये है कि मुसलमान जो पहुंचता है इनके जरिए तहारत के जरिए और वो जो पहुंचता है गंदगी और नापाकी के जरिए ये ऐसी है जिसे कपड़ा बंद कर लीजिए नापाक हो जाए तो हम कहते हैं इसे पानी से धो लो ताकि पाक हो जाए हिंदू कहता है नहीं शराब से अल्कोहल से धो लो ताकि साफ हो जाए तो जो फर्क सफाई और पाकिस्तानी में यही फर्क इन मुकाम तक पहुंचने में मुसलमान इसके बाद सारे ने नया चैप्टर बाब शुरू किया है और उसे शुरू किया है इस बात से कि बाब सिर तकलीफ इस बात का बयान करना है कि अल्लाह ने इंसानी को क्यों हुक्मों का पाबंद बनाया हमने क्या कसूर किया है कि हम ही इबादत करें और इताअत करें बाकियों के साथ ऐसे क्यों नहीं इससे वजह क्या है राज चीज का क्या है अल्लाह रहमतुल्लाह को बयान किया है समाज का